نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله، آج ہم حج کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اسلام کا ففتھ پلر ہے. حج کا معنی ہوتا ہے زیارت کا ارادہ کرنا، کہیں جانے کے لیے، زیارت کے لیے ارادہ کرنا، یہ حج کا معنی ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم پر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ حج کے لیے آپ کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس وسعت ہے، ذرائع ہیں، سہولت ہو گئی ہے، آپ کی تمام جو آج کل تو امیگریشن کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سب پوری ہو گئی ہیں، تو ہو سکتی ہیں، تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کہ حج سے ہی محروم رہ جائیں اور زندگی گزر جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ آل عمران میں آیت 97 میں، کہ لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی یہ انسان کے لیے کتنی بڑی سوچی محرومی ہے، تباہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جائے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرے کہ مجھے نہیں پرواہ پھر اس کی. جس انسان کو استطاعت بھی ہو پھر بھی وہ نہ جائے، کہ وہ ویکیشن پہ چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے، لیکن وہ حج پہ نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور حضرت عمر نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ کیونکہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی حج پہ نہیں جا رہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے صحت اور تندرستی بخشی اور روزی کی فراخی اور کشادگی عطا کی، اور پھر 5 سال کی مدت گزر جائے اور وہ میرے پاس نہ آئے، تو ایسا شخص محروم القسمت اور بد قسمت ہے. یعنی صحت بھی ہے اس کے پاس مال بھی ہے، اور یہ نعمتیں ہونے کے باوجود اور بھی اس کی جانے میں کوئی ایسی رکاوٹیں حائل نہیں ہیں، اس کے باوجود اس انسان کو یہ توفیق نہیں ہے یا شوق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائے اور وہاں پہ جا کے حج ادا کرے، تو ایسا انسان پھر 5 سال کی مدت تک بھی اگر نہ آئے، یعنی 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، اس کے پاس مال ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، کچھ سال گزرتے گئے، لیکن جب 5 سال گزر جاتے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں آتا، تو اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی؟ وہ پھر بد قسمت کہا گیا. کہ جس رب نے صحت دی اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے وہ صحت چھین بھی سکتا ہے، جس نے رزق دیا وہ اسے رزق واپس بھی لے سکتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو غنیمت جان کے جلدی سے جلدی حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے. اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد کریں تو نفل ہے. आप देखें कि इतनी बड़ी फजीलत है हज अदा करने की, यानी इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी कि जिस शख्स ने इस घर का हज किया और जिनसी बातों में इन्हमाक यानी उन ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर कोई कोई उस बारे में बात नहीं की और नाफरमानी से इज्तमा नाप किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, और वो अपने आप को इस तरह से पाक साफ समझे, इस तरह से वो पाक साफ हो गया जैसे कि वो उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। इतने आप पाक साफ हो जाते हैं। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हज मबरूर है ना, एक्सेप्टेड हज जो है, जिसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, उसकी जो जज़ा है वो सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है, यानी उसकी तो जज़ा जन्नत है ही है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक रिवायत है कि आमाल में अफजल अमल, सारे आमाल में ना सबसे अच्छा अमल अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाना है, फिर इसके रास्ते में जिहाद करना है, फिर गुनाहों से की आलूदगी से पाक और अच्छाइयों से भरपूर हज का दर्जा है। देखिए अब आप, और सही बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत है कि गुनाहों की आलूदगी से पाक और अच्छाइयों से भरपूर, यानी ऐसा हज जिसमें आपने कोई गुनाह नहीं किया और पूरा का पूरा आपने नेकियों में ही अपना टाइम गुजारा, उस हज की जज़ा जन्नत ही है। और वैसे भी औरतों के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत का जिहाद जो है ना वो हज मबरूर है, एक्सेप्टेड हज, ये औरत का जिहाद है। औरतों के ऊपर वैसे तो जिहाद नहीं फ़र्ज़ है ना, लेकिन उनका जो हज है वो ही उनका जिहाद है। और इसी तरह एक और रिवायत में है, ये आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपको पहले तो हज की अहमियत मालूम हो कि आप करने क्या जा रहे हैं, कितना बड़ा ये काम है और आपको इस पे क्या अजर मिलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ में, इस हज में ये सुस्ती करने वालों के बारे में फरमाया कि जो शख्स हज नहीं करता और उसे कोई ज़रूरी काम या कोई बीमारी या जालिम हुकूमत की रुकावट भी नहीं है, तो वो चाहे तो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, चाहे यानी अल्लाह ताला को फिर परवाह नहीं है कि वो जो मर्ज़ी, चाहे क्रिश्चियन मरे चाहे जू मरे, अल्लाह ताला को उसकी कोई भी परवाह नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हज जो है वो मामूली चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है जो आप तय करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जो इस सफ़र के लिए रवाना होने वाले हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आप अल्लाह ताला के मेहमान बनने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सब के हज को कबूल फरमाए और आपको गुनाहों से इसी तरह पाक करते कि जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है अभी। अब हज का मौका ऐसा है कि बाज़ दफ़ा हम हज के लिए और सारी तो तैयारी करते हैं, मसलन ये ख़रीद लो, वो कर लो, वो कर, बहुत इधर उधर से पूछते हैं, अच्छा उसके बाद कहाँ जाना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, मगर हम ये नहीं देखते कि हम हज करने क्यों जा रहे हैं, क्यों अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया है और हम इससे क्या पाएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए उसके बाद। देखें ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर मौके पे आपको ये चांस मिलेगा, आपको ये टाइम मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपना हिसाब किताब लें, और आपके पास बहुत काफ़ी टाइम होगा वहाँ पे कुछ ज़्यादा करने के लिए। इबादत नहीं है, यानी अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी नमाज़ें पढ़नी, जैसे हमारा रमज़ान का कॉन्सेप्ट होता है कि नमाज़ें होंगी, वो रोज़े होंगे, इबादत होंगी, पूरी पूरी रात जागना होगा, ऐसा कुछ भी हज पे नहीं, बल्कि इबादत भी मुख्तसर हो गई हैं, तो फिर हम करने क्या जा रहे हैं। आप देखें आप सारी दुनिया से कट के, सारी आसाइशों से, सारी सहूलतों से बिल्कुल कट ऑफ होके, रिश्तेदारों से दूर होके, और सारी जो जिस्मानी आपकी लज्जतें हैं उनसे भी आप एक तरह से किनारा कशी करते हैं, क्योंकि जाहिर है अहराम पहना होता है, सादा सा एक लिबास होता है। असल बात है हाजिरी की, नमाजें भी आपकी कम होती हैं ना, मुख्तसिर होती हैं। आप ऐसी जगह पे अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने जा रहे हैं, और ये एक समझ लें आप लोगों का एवरी मंथ तरबियती सेशन होता है ना, एवरी मंथ, तो ये एक तरबियती कोर्स है जिस पे आप जा रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में आप निकलते हैं अपने घर से, और आपकी पुकार क्या होती है, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं हाजिर। आप अल्लाह ताला की खातिर सब कुछ छोड़ देते हैं, घर, रिश्तेदार, लिबास, सब कुछ छोड़ के सफ़र पे निकल गए। किस लिए निकल रहे? बच्चे भी कभी आप घर पे छोड़ के जाते हैं, किसके लिए? जो अल्लाह ताला को अपना महबूब जानता है ना, उससे मोहब्बत करता है, वही फिर उसकी बुलावे पे चल पड़ता है सब कुछ छोड़ के। ये दरअसल अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक शो करता है। दीन की खातिर आप कितनी कोशिश करते हैं और कितनी कुर्बानी आप कर रहे हैं वो दिखाता है। अब वैसे भी इंसान देखें, जब अपनी ये जिस्मानी जो ज़रूरियात हैं, जैसे अब आपको बार बार यहाँ पे तो चेंज करना, फिर कभी सोशलाइजिंग, कभी दावतें, कभी कुछ, इन सब से अलग हो के, लोगों से, रिश्तेदारों से भी अलग हो के, आप अल्लाह ताला से वैसे ही करीब होते हैं जैसे आप इस दुनिया में आने के वक्त थे, और इंशाल्लाह जैसे दुनिया से रुखसत होने के वक्त होंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे। तो आप बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के साथ वहाँ पे ज़िंदा होते हैं, है ना, बिल्कुल कम के साथ ना। और असल चीज़, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी भी इंशाल्लाह कि आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए, मगर असल चीज़ जो साथ ले जाने की है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया, बेहतरीन जो सामान है वो तकवा का सामान है। तकवा साथ लेके जाना है, अल्लाह ताला का डर लेकर जाएं, सब्र लेके जाएं, दरगुजर लेके जाएं, तहम्मुल लेके जाएं, ये सब चीज़ें, शुक्रगुजारी लेके जाएं, ये सब चीज़ें साथ लेके जानी है। ये आपके सामान में साथ होनी चाहिए, और आप जब घर से निकलेंगे, ये नहीं कि आप वहाँ पे पहुँच के आप हज पे आए हैं, नहीं, आप जब घर से कदम बाहर निकालेंगे ना, तभी से आपका तरबियती कोर्स शुरू हो जाएगा। इसको, इसका नाम आपने रखना है तरबियती कोर्स। आप अब प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, अभी तो आप कुरान पढ़ते रहे हैं ना, तफसीर पढ़ते रहे, अब ये टाइम है प्रैक्टिकली आपको टेस्ट करने का, आपने क्या सीखा, और बहुत कुछ तो आप वहाँ पे भी जाके सीखेंगे। अब जहाँ, जब आप वहाँ पे अपनी, आपकी सेल्फ ट्रेनिंग हो रही होगी, यानी ये सारी आपकी ट्रेनिंग है, और उसके अंदर आप इस ट्रेनिंग में जब यही कहते रहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं हाजिर, हर एक जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मैं इस घर में हाज़िरी दे दी, अब मेरा दिल झुक गया, मैंने सरेंडर कर दिया। इताअत की ट्रेनिंग है ये, ओबीडियंस की ट्रेनिंग, कि बस मैं सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदार बन गई। और आप सोचें कि आप कम अज़ कम तकरीबन आपके 10-15 डेज़ तो आपके सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस हो जाते हैं ना, ना आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, ना आप कोई और अपने काम धंधे कर रहे हैं, सब छोड़ा हुआ ना, सारा का सारा वक्त आप अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं। असल चीज़ इसके अंदर ओबीडियंस की है, ये नहीं है कि अच्छा इसमें तो ये तो इबादत तो कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे तो हम बस भागे ही फिर रहे हैं, कभी बस में इधर जा रहे हैं, सारा टाइम हमारा बसों में गुजर रहा है, ये हो रहा है। असल बात ओबीडियंस की है, यहाँ पे आपकी ओबीडियंस चेक की जा रही है। कौन है जो ओबीडियंट अल्लाह का हुक्म मानता है? मसलन आप देखें, आप अराफा से जब निकलते हैं, कब निकलते हैं, जब मगरिब की अज़ान हो रही होती है, तब आप बसों पे बैठ रहे थे, अब उस वक्त दिल कहता है ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی، کیونکہ آپ نماز کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں، آج نماز نہیں پڑھنی، اب آپ بسوں میں بیٹھو اور آپ چل پڑو مزدلفہ کی طرف، یہاں پہ نماز نہیں ہوگی. اب آپ کے لیے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے لیے ریچولز جو ہیں، یہ ریچولز نہیں ہیں میرے لیے، اصل بات ہے نماز نہیں بڑی، اللہ کا حکم بڑا ہے میرے لیے. میرے رب نے کہا چل پڑو، تو اب میں چل پڑی، میں نکل گئی. اب آپ کے پاس وہاں پہ اتنا وقت ہوتا ہے، اتنا سارا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں تو بلکہ بہت لمبی چوڑی نمازیں پڑھ سکتی ہوں. آپ کو نماز کے لیے کہہ دیا جاتا ہے نماز کو قصر کریں، قصر کر کے پڑھیں، حالانکہ آپ کے پاس وقت بہت ہے، مگر آپ قصر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سارے آپ سفر میں دیکھیں گے اوبیڈینس کی صرف بات ہے، کتنا آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. اور یہی چیز کی پریکٹس آپ نے وہاں پہ کر کر کے اگر واقعی آپ کا حج قبول ہوا ہے، تو اسی پریکٹس کے ساتھ جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاوا آئے گا، چینج آئے گا، کیونکہ آپ مسلسل اس پریکٹس میں لگے رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. اور یہ پریکٹس کر کر کے آپ ان 10-15 دنوں میں اس کے عادی ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ کے حکم سے، ہے سب سے بڑا میرے رب کا حکم ہے. اور جب آپ حج کے، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ حرام میں کیا چیزیں حرام ہیں کیا حلال ہیں، وہ آپ کو تمام کتابوں میں مل جائیں گی. تھوڑا سا میں آپ کو حج کے سفر کا تو بتا دوں گی، لیکن کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، لیکن بہت مختصر. اصل چیز، یہ ساری چیزیں آپ کو نا اصل میں کتابوں میں مل سکتی ہیں. اور اب آپ لوگ سبھی، مجھے امید ہے کہ سب لوگ کتابیں تو پڑھ رہے ہوں گے، لوگ اس طرح کی تیاری تو بہت کرتے ہیں، مگر جو دلوں کی تیاری ہے نا وہ نہیں کرتے. دلوں کی تیاری پہلے سے کرنی ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ جانے والے ہیں حج پہ، تو اس سے پہلے سے آپ کی تیاری شروع ہونی چاہیے. حج پہ پہنچ کے نہیں، آپ کی تیاری کافی ہفتے پہلے سے ہی سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی آپ کے اندر ایک چینج محسوس کریں گے، کیونکہ آپ یہیں سے تیاری شروع کرنے لگے ہیں. ان ایڈوانس پریپیئر کریں. سب سے پہلی آپ کی تیاری کس چیز کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی تیاری آپ کی، جو پہلا سوال ہوگا آخرت میں، وہ ہے نماز کا. سب سے پہلی تو آپ کی نماز کی تیاری ہو، جو آپ کافی دن پہلے سے شروع کر دیں گے. یعنی اپنی نمازوں کو کس طرح میں ایکسلنٹ درجے کا بناؤں. آپ اس میں دیکھیں گے، اپنی نمازوں کو چیک کریں پہلے، ان کی کوالٹی کو چیک کریں کہ میری نماز کی کوالٹی کیا ہے. آپ دیکھیں، آج اگر آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اپنے سے کچھ سوالات کریں. پہلا تو آپ سوال اپنے سے یہ کریں کہ کیا میں نے وقت پہ نماز پڑھی؟ افضل وقت میں، جو افضل ترین وقت ہے، اس پہ نماز پڑھی؟ اور میں نے سنت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نمبر ٹو کوسچن. میں نے نماز میں کانسنٹریٹ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے نماز کا مطلب سمجھ سمجھ کے پڑھا نماز کو یا نہیں؟ میں نے نماز سے پہلے مسواک کی تھی یا نہیں؟ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں، جو میں بھی کسی حد تک سمجھتی تھی، کہ پتہ نہیں وہاں جاتے ہی میں نے کیا سے کیا بدل جانا ہے. کوئی میں وہاں پہ جاتے ہی شاید خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی کوئی فرشتہ بن جاؤں گی، یا میں اس زمین پہ اترتے ہی شاید وہاں پہ کوئی میجک ہے کہ پتہ نہیں ایک دم سے میں نیک ہو جاؤں گی. یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ جو کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے نا، جن عادات کے ساتھ، آپ انہی کے ساتھ وہاں ہوں گے. کوئی میجک نہیں ہے کہ جو آپ کو بدل دے گا. آپ یہیں سے اپنی عادتیں صحیح کریں گے تاکہ وہاں پہ آپ کو ہیلپ کرے. تو آپ اپنے نماز کے مارکس اپنے آپ کو دیں گے، ہر نماز کی 10 مارکس رکھ لیں مثلا، ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے میں جا کے آپ اپنی آپ کی 50 مارکس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے ملے ہیں، ڈپینڈنگ آن دیز کوسچنز. ہو سکتا ہے آج آپ کو کم نمبر ملے اور آہستہ آہستہ آپ کے نمبر بڑھتے جائیں. جب آپ کے نمبر بڑھتے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ نے پھر جب حج پہ پہنچیں گے آپ تو ان شاء اللہ آپ کی نمازیں احسان کے لیول پہ ہونی چاہیے. ہم ابھی محسنین کی بات پڑھ رہے ہیں نا اپنے سبق میں بھی، تو احسان کے لیول پہ آپ کی نمازیں ہوں ایکسیلنٹ درجے کی، وہ ہونی چاہیے. اسی طرح نماز کے علاوہ اپنی دعاؤں کی تیاری آپ نے کرنی ہے ابھی سے. اور دعاؤں کی تیاری کے لیے کیا ہے کہ ایک دعاؤں کی لسٹ بنائیں اپنی زبان میں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بکس بہت خریدتے ہیں، کئی افسوس ہے مجھے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بکس میں بہت ساری عربی کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ عربی جو ہے نا بس وہ قرآن ہے یا سنت ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ، حالانکہ وہ عربک جو ہے کسی بندے نے لکھی ہوئی اپنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اب ہم ان کو بہت خوشی سے جوش سے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ عربی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو قرآنی دعائیں ہیں یا جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو آپ عربی میں پڑھیں، بالکل وہ اسی میں نازل ہوئی ہیں، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، آپ ان کو پڑھیں. مگر جو باقی دعائیں ہیں وہ تو کسی انسان کی لکھی ہوئی ہیں نا، تو وہ دعائیں تو آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ قرآنی دعائیں تو عربی میں پڑھیں گے، مسنون دعائیں بھی پڑھیں گے، وہ بھی آپ نے اپنے پاس یہ کلیکشن تو رکھنی ہے، مگر کچھ دعائیں بلکہ اور جتنی بھی باقی دعائیں ہیں وہ آپ اپنی زبان میں لکھیں جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں. اور اس کے لیے یہ 2-4 منٹ میں نہیں لکھنے والی چیز، ایٹ لیسٹ آپ 15-16 پیجز کی دعائیں لکھیں ابھی سے پریپیئر کریں، 15-16 پیجز کی، ٹھیک ہے. ایک نوٹ بک اپنی بنائیں جو پاکٹ سائز نوٹ بک ہو جس میں آپ یہ دعائیں لکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ دعائیں تو مانگنی ہیں آپ نے. نمازیں کم ہیں دعائیں زیادہ ہیں، آپ کو پتہ اتنا دعاؤں کا ٹائم ہوگا وہاں پہ، اسپیشلی عرفہ کے دن، اور وہ تو ہے ہی دعاؤں کی قبولیت کا دن، کیونکہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بدر کے دن کے علاوہ شیطان کسی دن پہ اتنا زیادہ ڈپریس، اتنا زیادہ ریجیکٹڈ فیل نہیں کرتا، اتنا زیادہ یعنی افسردہ نہیں ہوتا جتنا کہ عرفہ کے دن ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس دن اتنی نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اتنی زیادہ ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. دیکھو اس کو تم نے کہا تھا نا، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ یہ تو خون بہائے گا، یہ انسان اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، فرشتوں نے کہا تھا نا یہ تو خون بھی بہائے گا اور کتنا جھگڑے یا فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم نے یہ کہا تھا نا، یہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح گھروں سے نکلے ہوئے اور ایک میدان میں جمع ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. یہ لیکچر دینا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اسی لیے میں بہت اس سے سالوں سے آپ لوگ کہہ رہے تھے لیکن میں نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میرے لیے بہت ہی یہ میں اس میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. آپ ہر سال ہی جب لوگ جانے لگتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کر جائیں وہاں پہ دوبارہ ان شاء اللہ. تو وہ دعاؤں کا دن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے کہ اس دن کرتے ہیں عرفہ کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کا دن کی جائے. عرفات کا جو دن ہے نا، 9 ذی الحج کا، جس دن آپ میدان عرفات میں ہوں گے، اس دن کھڑے ہو کے دعائیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بہت دفعہ یعنی کئی گھنٹوں اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی عرفہ میں، اس میدان میں. اور اس میدان میں ہی آپ جبل رحمت بھی دیکھیں گے جہاں پہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. تو بہت سارے لوگ اس پہ چڑھتے بھی ہیں، اگر آپ کو ہمت ہو اور قریب ہو تو तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ अपने आप को एग्जॉस्ट करने की बजाय वहीं पे जहाँ पे भी आप टेंट वगैरह में हैं वहाँ पे दुआएं करें। और ये दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन है, याद रखें, आप ये पूरे हज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन आरफा का दिन है, लिख लें इसको कहीं। प्लीज़ उससे पहले अपने आप को एग्जॉस्ट ना कर दें, ओवर एग्जॉस्ट ना करें, टायर्ड ना हो जाएं। अब अक्सर लोग वहाँ पे जाके ना सो जाते हैं, वो इतने दिनों से इतने थक गए होते हैं तवाफ कर करके, और बहुत अपने आप को मतलब और ही बातें ऐसे करके कि वहाँ पे आके बस उनको इतनी नींद आई होती है वो सो ही जाते। उस दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है आपने। आपने अपने आप को ऐसे नहीं लेकर जाना वहाँ पे कि आप थके हुए हों, आपको नींद आ रही हो और आपका वो दिन ज़ाया हो, क्योंकि हज जो है वो अरफा का दिन ही है। बस समझ लें ये बात, हज अराफात है। यहाँ पे की गई जो आपका जो खड़ा होना है, जिस जो अरफा में नहीं किया ना उसका हज नहीं हुआ, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि हज है ही अराफात का दिन जो है, उस मैदान में आपका पहुँचना और उस मैदान में आपका दुआएं करना, और वो दुआओं का दिन है। बस सिर्फ जोहर असर वहाँ पे पढ़ेंगे, आप मगरिब तो पढ़ेंगे ही नहीं ना, तो आप खुद ही सोचेंगे पूरा दिन आप वहाँ पे हैं तो और क्या कर रहे होंगे। आपने बस दुआएं करनी और इसकी तैयारी आप करें, दुआओं की तैयारी करें। और दुआओं में आप क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, मसलन ईमान की सलामती की दुआएं करें, सेहत की, ताकत की, अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए, और सबसे ज़रूरी दुआ अपनी आखिरत के लिए दुआ ज़रूर करें, अपने घर वालों की आखिरत के लिए दुआ करें। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, जो जो दुनिया मांगते हैं हम उसको दुनिया देते हैं, और जो दुनिया और आखरत मांगता है हम उसको दोनों देते हैं। जो दुनिया मांगे और आखरत नहीं मांगता उसके लिए आखरत में कोई अजर नहीं है। तो आखरत का अजर उन्हीं लोगों को, आखरत की जो बख्शिश है वो सब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने उसकी ख्वाहिश की थी, उसके लिए दुआ की थी। इसीलिए बेहतरीन दुआ है ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाब अन्नार, इसलिए है ये दुआ दुनिया और आखरत दोनों के लिए। तो इसी तरह अपनी औलाद के लिए जब दुआ मांगी ना, तो प्लीज़ अपनी अगली नस्लों के लिए ज़रूर मांगना, अगली नस्लों के लिए। हाँ, और अपनी औलादों के लिए, चाहे आपके बच्चे अभी छोटे ही क्यों ना हों, ये भी दुआ मांगें कि या अल्लाह इनको जो जोड़े मिले वो भी नेक मिले, इनकी अगली ज़िंदगियों के लिए भी, चाहे अभी आपके बच्चे बेबीज़ हैं फिर भी ये दुआ करें। हज़रत मरियम की वालदा ने देखे उस वक़्त जब वो अभी पैदा हुई, उस वक़्त उनकी औलाद के लिए भी दुआ की थी। हज़रत मरियम पैदा हो रही हैं और मरियम की आगे दुआ की, औलाद के लिए भी दुआ की। इसी तरह आफ़ियत की दुआएं मांगे, आफ़ियत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए, और पूरी उम्मत के लिए ज़रूर दुआएं मांगे। तो जो भी दुआ आपके जहन में आती है ना, ज़रा कुछ घंटे इसमें लगाएं और प्रिपेयर करें अपने लिए दुआएं, और एक सवाल खुद से करें, एक क्वेश्चन करें जब आप ये दुआओं की लिस्ट बना रहे हो ना, कि अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि आज मांगो क्या मांगते हो तुम, जो मांगोगे मैं दूंगा, तो मैं क्या मांगूंगी, क्योंकि वाकई अल्लाह ताला ये कहते हैं मांगो मुझसे। तो अगर आपके लिए आसमान से ये ऐलान हो तो आप क्या मांगेंगे, बस वो सब कुछ लिख लें। ये लिस्ट इसलिए आप बनाएंगे ताकि वहाँ जाके ना आपका वक्त ज़ाया हो, क्योंकि वहाँ पे फिर होता ही है थोड़ी सी दुआएं कर ली ना, अब दुआएं भी नहीं जहन में आ रही, आए कौन सी दुआ करें, आप आए क्या आप मांगी, सारी तो चीज़ें मांग ली हैं। तो जब आपके पास लिखी होंगी ना, आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा। दूसरों की भी दुआ लिस्ट ले लें, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी और हज पे जाने वालों ने या किसी और ने भी दुआ की लिस्ट बनाई हुई, आप वो भी लेके उनसे बोरो करके उनसे भी दुआएं ऐड कर सकते हैं अपने पास। और दूसरी ये बात है कि आप का हमारा रमज़ान का सेशन हुआ था उसमें भी हम एंड में दुआएं मांगते थे, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो दुआएं तो बहुत सारी हैं, आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह मसनून दुआएं तो आप अपने पास रखेंगे, उनकी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें, ये ना वहाँ पर जाके फ़र्स्ट टाइम पढ़े तो फिर आपको आए भी नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही ना आए, और इस तरह से उनको बेशक आपको याद नहीं भी हो तो तब भी उनका मतलब ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए कि मैं क्या मांग क्या रही हूँ। क्योंकि जब आप इस तरह से अरबी में दुआएं मांगती हैं तो आपको अक्सर मालूम नहीं होता कि मैं क्या मांग रही हूँ, और जिस दुआ में आपने दिल नहीं अपना लगाया, दिल से नहीं मांगी, वो दुआ कबूल नहीं होती। दुआ आपके दिल से निकलनी चाहिए। इस तरह अगर लोग कुछ लोग कहें कि हमारे लिए दुआ करना, तो आप उनके भी नाम लिख लें किस जिसने दुआ की दरख्वास्त की भी और क्या क्या दुआ करनी है। आप उनसे पूछ लिया करें कि आप बताएं कि क्या दुआ करनी है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए वहाँ पर दुआ करना, फिर आप क्या दुआ करें भाई, बख्शीश की दुआ करें, जन्नत की दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, किस चीज़ की दुआ करें, तो फिर आप उनसे पूछ के इसी अपनी दुआ लिस्ट में आपने शामिल कर लेना। और इस ये इतनी सी बुक होनी चाहिए जो आपके बैग में या उसमें आ जाए, पर्स में, जो भी आपने हैंड बैग अपना कैरी करना है उसमें आ जानी चाहिए, ताकि आपके साथ साथ रहे ये। फिर आप यहीं से आप अभी अपनी विल बना लें, और विल में आप अपनी सारी जो भी आपकी वसीयत का, मैंने आप लोगों को जब फ्यूनरल वर्कशॉप भी थी तो आपको फाइनल विल के बारे में सारा बताया था। अगर आप लोगों को भूल गया या वो नोट्स आपके पास हैं, आप नोट्स से फ़ायदा लें, भूल गया तो आप वेबसाइट से जाके फिर से सुन लें उसको। तो आप अपनी विल ज़रूर लिखें, और मैं विल के उसमें नहीं जाती, मगर डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर आप जब विल लिख लें तो अगर आप कोई लॉयर नहीं भी है तो आप अपने रिश्तेदारों से, कुछ लोगों से, अपने 4-6 लोगों से सिग्नेचर करा लें कि वो गवाह बन जाएं कि आपने ये विल लिखी है, और फिर उसके बाद आप इसकी कॉपियां बना के अपने कुछ लोगों को दे दें। ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं आपको पता ही ना हो कि कहाँ पर आपने विल रखी हुई है, कि अगर आपको वहाँ पर मौत आ जाती है, सुबहान अल्लाह, वहाँ की तो कुछ किस्मत है, लोग जो हज पे जाएं और फिर वहीं पे अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला ले, तो इसको वहाँ पे मौत आ जाए तो बड़ा ही खुशकिस्मत है। तो मतलब ऐसा अगर हो जाए तो फिर आपकी विल होनी चाहिए ना मौजूद। और फिर इसी तरह जब आप जाने लगें तो सब अपने जो रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर रिश्तेदारों में नाराज़गियाँ हो जाती हैं, कभी एक दूसरे से बोलचाल बंद है कुछ सालों से, या और कोई रंजिशें हैं, तो सबसे, ये नहीं है कि सिर्फ जिनसे नाराज़गी है, सभी से कोशिश करें आप कॉल करें उनको और उनसे माफ़ी मांग लें कि मेरे से कोई कमी कभी कोताही हो गई हो, तो अब मैं इस सफ़र पे जा रही हूँ तो आप मुझे माफ़ कर देना हो इसके लिए। तो ये ज़रूर आपने करना है। इसी तरह अभी से आप सब्र की प्रैक्टिस शुरू कर दें प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे मौाक़े पे आपको सब्र करना होगा, और यही आपका इम्तिहान है। देखिए, आज के सफ़र ऐसे मुश्किल सफ़र नहीं है जैसे पुराने ज़माने में होते थे कि ऊँटों पे जा रहे हैं या फिर शिप्स में जा रहे हैं और कई महीने लग गए फिर वहाँ पे पहुँचे। आप अक्सर सोचते होंगे कि मैं अच्छा सब्र करूँगी जब वहाँ पे मेरी कोई व्हीलचेयर लेके और मेरे पाँव पे से गुजार देगा, तब मैं सब्र करूँगी। तो सब्र असल में बात ही है, वहाँ पे तो जाके जो सब्र करना है, मगर आपको इसकी प्रैक्टिस यहीं से करनी है। और आपका हज का सफ़र, एक बात जहन में अभी से रख ले, हज का सफ़र जब आपने अपने घर से कदम बाहर निकाला तब से आपका हज शुरू हो गया, बस ये याद रखें, आपका हज स्टार्ट हो चुका है। आपको अब एयरपोर्ट से लेके और फिर जहाज़ में और फिर वहाँ पे उतर के जो मुश्किलात भी होती हैं उसमें सब्र करना। सब्र का मतलब क्या? आपने अच्छे तरीके से बर्दाश्त करना है। सब्र सिर्फ खामोशी नहीं है कि आप बस चुप करके बैठे रहे, वो मेरा सब्र हो रहा है और मैं अंदर ही अंदर कुड़ती जा रही हूँ। देखें, मुश्किलात आएंगी, हो सकता है बसें लेट हो जाएं, हो सकता है जहाज़ लेट हो सकता है कि आपको लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़े, हो सकता है कि खाना आपके मुताबिक से ना सर्व हो सकता है कि स्पाइसेस आपके मुताबिक के ना हो सकता है जैसे आपको प्रॉमिस किया गया था उस तरह का होटल का कमरा ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके अंदर आपने सब्र, ये नहीं है कि बस चुप करके बैठ रहे हैं, सब्र ये आप मसले को हल कर सकते हैं, उसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रहम का मामला करें, नरमी का मामला करें और शुक्रगुजारी को ना छोड़ें। ठीक है, आप मसले को हल करना बुरा नहीं है, मगर वावेला करना, चीखना चिल्लाना, उससे लड़ें उससे लड़ें, ये तो आपको पता है कि अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि ये ममनुआत है हज में से, हज में ये कर ही नहीं सकते। क्या क्या चीज़ें ममनुआत अहराम में हैं उनके अंदर ये भी शामिल है। तो सब्र यहाँ से ही शुरू कर दें, आजकल में ही आप बच्चों के साथ सब्र करें और कई ऐसी बातों पे आप सब्र करें। अच्छा, कुछ लोगों की सब्र की देखें बात ये होती है कि बाज़ लोग कुछ चीज़ों पे सब्र कर सकते, दूसरी पे नहीं कर सकते। मसलन कुछ लोग खाने पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन कहते हैं भाई टॉयलेट फैसिलिटीज़ पे मैं सब्र नहीं कर सकती, वो तो साफ़ ही होना चाहिए, वो तो ऐसा होना चाहिए। भाई बात यह है कि आपने वहाँ पे हर स्टेप पे ही सब्र करना, ये पूरा सफ़र ही सब्र का सफ़र। इसी तरह शुक्रगुजारी अभी से सीख ले, जिन चीज़ों को आपको पसंद नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, आप नेगेटिव चीज़ें ना गिने, आप पॉजिटिव चीज़ें भी तो देख सकते हैं और उन पे सब्र कर वो शुक्र कर सकते हैं। मसलन है आप देखिए ना, वो कहते नहीं है कि हाफ ग्लास हाफ फुल देखना और हाफ एम्प्टी देखना, तो आप क्या देख रहे हैं, हाफ एम्प्टी देख रहे हैं या हाफ फुल देख रहे हैं? अगर आपको मसलन है कि खाना आप बहुत सारा वहाँ पे ऐसा ऐसा अच्छा खाना मिलता है, इतना बेहतरीन कि जितना आपने कभी घर में भी नहीं खाया, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है लो देखो ज़रा कितना खाना वेस्ट करते हैं, कितना ये करते हैं, इससे तो बेहतर था किसी गरीबों को दे देते, यहाँ तक वहाँ तक खाने की लाइनें लगी हुई हैं। और दूसरा रवैया ये हो सकता है कि आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी, मैं अल्लाह की मेहमान बनी तो अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे उससे भी अच्छा खिलाया जितना मैं घर पे खाती थी। अच्छा फिर हो सकता है कि आपको खाना जितना उन्होंने कहा था, इसलिए खाने की मैं बार बार बात कर रही हूँ, बहुत सारे झगड़े वहाँ पे खानों पे भी होते हैं, तो जितना आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक नहीं आपको खाना मिला। अब खाने में कोई आपकी पसंद का नहीं है या अरेबिक स्टाइल का खाना है वो आप खाते नहीं हैं, आप यूज टू नहीं हैं, आप खा खा के भी उससे अब तंग आ गए हैं। ज़ाहिर है 10-15 दिन ऐसा खाना खाना जो आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं होता, बहुत सब्र आजमा भी हो जाता है। तो उसके अंदर फिर आप देखें जब आप वो खाएं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि खाना कितना बेलज्जत है और देखो ज़रा इनको तो खाना हमारे मुताबिक एक दिन नहीं इन्होंने हमें खाना दिया, इनको नहीं पता था कि हमने इन दूसरी नेशनलिटीज़ के भी लोग आ रहे हैं, इनको उनका लिहाज रखना चाहिए था, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी रवैया हो सकता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा पेट भर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्र और शुक्र दोनों साथ लेके जाएं, ठीक है? ये आपकी सामान में जहाँ पे आप दूसरी चीज़ें रख रही होंगी, सब्र और शुक्र भी रखना है आपने साथ। फिर अभी से प्लीज़ आप अपनी फिज़िकल प्रेपरेशन भी करें। देखिए हज वो इबादत है जो माल और जान दोनों की इबादत है, नमाज आपकी सिर्फ़ जान की इबादत है, ज़कात आपकी सिर्फ़ माल की इबादत है, माली इबादत है, लेकिन हज दोनों चीज़ों की इबादत, जानी भी माली भी। आप माल तो स्पेंड कर लेते हैं ठीक है, मगर आप फिज़िकल अपनी कोई तैयारी नहीं करते। आप यहाँ पे इतना यूज्ड टू हैं ऐसे खाने खाने के, बहुत ही निहारियाँ और पाए और पता नहीं क्या क्या, और बहुत सोने के लंबे लंबे आर सोने के आदि हैं। वहाँ पे जब आप जाते हैं आप तहज्जुद के लिए भी उठ रहे हैं, आपकी नींद भी या तो मुख्तसर हो रही है, आप खाना भी आपके मुताबिक नहीं मिल रहा, आप जल्दी फिर स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और वॉक बहुत करनी पड़ती है, तो फिर आप जो आपका असल दिन आता है तो आप फ्रेश ही नहीं रहते। कुछ लोग जाके फिर थोड़े दिन बाद 4-5 दिन तो बड़े फ्रेश रहते हैं, फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो आप फिज़िकल अपनी प्रेपरेशन ज़रूर करें, अपनी वॉक 5 डेज़ अ वीक वॉक करें, और एटलीस्ट 45 मिनट्स की आप वॉक करें। स्मॉल स्टेप्स में वॉक करना, स्मॉल स्टेप्स लेकर, और इसकी भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको इसलिए ये बात कह रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम यूज़ टू नहीं होते स्मॉल बेबी स्टेप्स की साथ वॉक करने के, लेकिन वहाँ पे जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो बेबी स्टेप्स में ही आपको चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है कि आप ये खाली जगह थोड़ी है कि आप तेज़ तेज़ वॉक करते हुए और तवाफ़ करें, बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स, उससे सारे ये मसल्स खिंच गए टांगों के। अब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी ना उस चीज़ की वजह से, और ये मतलब आपको अगर वॉक की आदत नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि ये इस तरह से हो आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे वॉक वाकई करनी पड़ती है आपको, होटल से लेकर, अगर आपका होटल करीब भी है तब भी ज़ाहिर है तवाफ़ करेंगे तो वॉक है, अगर आप ऊपर की मंजिलों में वॉक करते हैं तो वहाँ आपका चक्कर ही बहुत लंबा है, अगर आप नीचे वॉक करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो इन एनी केस जितना भी आप तवाफ़ करेंगे उसमें वॉक ही है ना सारी। और जब आप खाना काबा में हों तो कोशिश आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए कि आप उम्रा तो आप कर लेंगे ना, उसके अलावा भी जितने दिन भी आप वहाँ पे होते हैं, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप तवाफ़ कर लें। वैसे भी तवाफ़ होता है उम्रे के अलावा भी, कि आप तवाफ़ करते रहें, क्योंकि तवाफ़ जो है ना दुनिया में और कहीं भी नहीं आप कर सकते। आप कुरान पाक कहीं और भी पढ़ सकते हैं, आप तस्वीरें कहीं और भी कर सकते हैं, आप ठीक है, आपकी नमाज़ तो वहाँ पे खैर लाख नमाजों के बराबर अजर है, तो आप नमाजें तो पढ़ेंगे ही, मगर तवाफ़ आप कोई और जगह का तवाफ़ कर ही नहीं सकते सिवाय काबा के। और जब आप तवाफ़ से थक भी जाए ना, तो बैठ के ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से आपको काबा नज़र आए सामने, उसको देखते रहें, उसको देखने का भी अजर है। पता है आपको, वो उन चीज़ों में से है जिसको सिर्फ देखना है आपने, देखते रहेंगे उसका भी आपको अजर मिलेगा। इतनी प्यारी वो जगह है। अच्छा, तो आपकी जो फिज़िकल तैयारी है ना, हाँ उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, अभी से आप बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू करें। आप एवरी डे जितना आप पानी पीती हैं, कम से कम 2-3 लीटर आप हर रोज़ पानी पिया करें, ताकि आपकी बॉडी को आदत पड़े कि इसको एब्जॉर्ब करे, आपको उससे एनर्जी भी मिलेगी। ग्रीन वेजिटेबल्स आप लें, और इसी तरह कम खाने की थोड़ी आदत डालें, बहुत बिग मील्स खाने की अभी परहेज़ करें, स्मॉल मील्स खाना शुरू करें। और आपको देखें, जब आप अपनी हेल्थ की पीक पे थे, तो आप खुद सोचें कि उस वक्त आप क्या किया करती थी। अगर आप उस वक्त वॉक करती थी, या क्योंकि हर एक की बॉडी अपने मुताबिक है ना, ये तो मैं वैसे एक आपको बता रही हूँ, मगर आपकी हर एक की बॉडी डिफरेंट है, तो आप खुद देखें कि आप जब आपका पीक टाइम था जिसमें आप स्लिम स्मार्ट थी, तो उस वक्त आपकी क्या रूटीन हुआ करती थी। आप उस तरह से जब जितनी आप वॉक करती थी, या जो आप हेल्थ कॉन्शियस डाइट ले लेती थी, इस तरह से आप अपनी डाइट को मुनासिब करें, बहुत ज़्यादा मुर्गन गिज़ाएं खाने से परहेज़ करें। और जब आप हज पे वहाँ पहुँचेंगी ना, तो आपको पता है जमज़म जब आप पीते हैं, तो जमज़म पीने से पहले जो भी दुआ आप करते हैं वो कबूल होती है। तो आप वहाँ पे जब जमज़म पीने लगें, एक तो जमज़म खड़े होके पिया जाता है ना, आपको पता है ना, तो जब आप जमज़म पीने लगें खड़े होके, तो फिर आप उससे पहले दुआ करें कि अल्लाह मुझे पूरे हज में मुझे सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखना, और मेरा पूरा हज जो है ना वो खैरियत के साथ गुजरे, और मेरे हज को कबूल कर लेना। इस तरह से आप दुआएं मांगें। इसी तरह जब आप खाना काबा को पहली नज़र डालती हैं, उसके ऊपर तो जो दुआ करती हैं वो भी कबूल होती है। तो आप हर एक की अपनी अपनी दुआएं हैं, जो भी चाहे कुछ टिप्स ये हैं कि जैसे रब्बाना आतिना आप कर सकते हैं, वो दुआ बहुत अच्छी है, उसमें दुनिया और आखरत सबकी भलाई आ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि या अल्लाह जितनी भी दुआएं हम हज पे मांगें वो सारी कबूल हो जाए, बेहतर है कि आप कोई स्पेसिफिक दुआ मांग लें जो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सी दुआ हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप लोग जो वहाँ जाके, बड़ी उनको ये फिक्र होती है कि पता नहीं अब इसके बाद क्या करना है, और इसके बाद क्या होना है, और इसके बाद हमने किधर जाना है और किधर। आपको मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश करें कि हज के सारे स्टेप्स को, मेन मेन स्टेप्स, मसलन है स्टेप 1 है मीकात, स्टेप 2 है कि अब मैंने उमरा करना है, स्टेप 3 है कि मैंने ये करना, वो उनको मेमोराइज़ कर लें। उमरे के भी स्टेप्स को एक पेज पे लिख लें और उनको मेमोराइज़ कर लें, और हज के भी स्टेप्स को। अब मैं आप मेन स्टेप्स आपको बताती हूँ, ताकि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप उसी तरह से अपना ड्रॉ कर लेंगे मैप, ठीक है। हज और उमरे की किताबें तो होती हैं, और आप एक आध किताब ज़रूर कोई साथ रखिएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगी हज और उमरे की किताब, जो हज और उमरे के मसाइल, इकबाल खिलानी की जो बुक है, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है, तो आप जिसमें भी आप लैंग्वेज में चाहें वो ले लें। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब वाजे हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मेन स्टेप्स को याद कर लें, ताकि आपको वहाँ पे ये ना फिक्र रहे कि हाय वो कि कहाँ पे कौन सी करना था, क्या करना था, इधर क्या होना था, उसके बाद किधर जाना है। नहीं, आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, और याद करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आपको अब मैं स्टेप्स बताती हूँ कि जो हज के स्टेप्स हैं, आपका हज जो है ना, सिर्फ ऐसे तो आप समझते होंगे, पता नहीं कितना लंबा हज होता है, हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, शायद 10 दिन का ही हज है या 20 दिन का हज है, नहीं, हज सिर्फ 5 दिन का ही होता है, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले जो आप स्टार्ट करते हैं, मीकात से स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ पे आपने एहराम बांधा अपना, अगर आपका हज तमत्तो है जिसके अंदर आप उमरे का एहराम बांधते हैं, और उसके बाद जाके आप उमरा करके फिर आप एहराम की कैद से बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद आप फिर हज के दिनों में दोबारा एहराम की नियत करते हैं। और औरतों का एहराम याद रखें, कोई भी कपड़े जो भी आपके अब कवर्ड कपड़े हैं वो एहराम ही है, आपने बस नियत करनी होती है। औरतों के लिए कोई स्पेशल कपड़े नहीं कि वो वाइट ही कपड़े पहनो। तो मर्दों के लिए आपके लिए तो बड़ी आसानी है, जो मर्जी चप्पल पहन लें, जो मर्जी कपड़े पहने, वो आपके लिए जो भी कंफर्टेबल शूज आपके लिए। तो आप मीकात पे स्टार्ट करते और उसके बाद आपने स्टेप वन लिख ले, स्टार्ट फ्रॉम मीकात, के वहाँ पे आपने एहराम की नियत कर ली, जो भी आपने कपड़े पहने हुए उन्हीं में आपने नियत कर ली बस। उसके बाद आपने स्टेप टू क्या किया, उम्रा किया, आपने उम्रा अदा करना है। और उम्रा अक्सर लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह पता ही होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके कभी कभी ये भी होता है कि जी आपके वो नहीं मिल रहे, जो गाइड आपको, लीडर आपको लेके गया था, वो ही नहीं मिल रहा कि कहाँ है। अब आप फिर इतने परेशान होते हैं कि अब करना क्या है, तो मुझे क्या पता। तो इसलिए बेहतर है कि आप उम्रे का आपको मसनून तरीका मालूम होना चाहिए। आपने मसलन उम्रे का में क्या होता है कि एहराम पहना, एहराम से पहले अगर आप चाहें तो आप शावर ले लें, लेकिन मुश्किल ही होता है, आप घर से ही शावर लेकर जाएंगे। घर से आपने शावर लेना है और साफ़ सुथरे बिल्कुल हो के अपने आप को पाक साफ़ बिल्कुल कर लें, तमाम अपनी निजासतें जो है ना बिल्कुल, फालतू अपने बाल भी साफ़ करें और सब, अपना जितना भी अपनी क्लीनलीनेस के लिए कर सकते हैं। खुशबू नहीं आपने लगानी, ठीक है, औरत के लिए नहीं है। अच्छा, जब आप फिर एहराम बांधते वक्त बस आप कहेंगे लब्बैक उम्रा, लब्बैक का उम्रा था, ये आप उम्रे की नियत आपने कर ली। अब उसके बाद से जब से आपने आराम फिर अब बांध लिया ना, आपने तलबिया पुकारना शुरू कर देना। लेकिन औरतें जो होंगी वो ऊंची आवाज़ में नहीं पुकारेंगी, ठीक है, उनकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद वहाँ जब आप पहुँचे, तो जब आप खाना काबा में पहुँचे, अल्लाह के घर में पहुँचे, तो तवाफ़ शुरू करने से पहले आपने फिर तलबिया कहना बंद कर देना। अब नहीं तलबिया पढ़ना तवाफ़ करते वक्त, ठीक है। फिर हिजरे अस्वद से आप स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ से आपने शुरू किया। और वहाँ पे होता तो ये है कि आप उसको बोसा दें, किस करें, लेकिन अगर वहाँ पे जो कि आप प्लीज़ कोशिश ना करना कि धक्कम पेल करते हुए आप वहाँ पे पहुँचे और नहीं जी मैंने आप ज़रूर करना है और आदमियों में घुसे चले जा रहे हैं, आप प्लीज़ औरतें ना इस तरह की कोशिश ना करें। और आप ये कर सकती हैं कि वहाँ उसकी तरफ हाथ का इशारा करके और उसके बाद आप अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर आप करके और फिर आप अपना स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन दोनों हाथ नहीं आपने बुलंद करने हैं, हाथ से बस इशारा करना है, एक हाथ से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हर चक्कर पे आप बार बार आएंगी और हिजरे अस्वद का इस्तेलाम करेंगी। इसी तरह फिर रुकने यमानी और हिजरे अस्वद के दरमियान आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिर दुनिया सनातन, ठीक है। और रुकने यमानी को आपने बोसा नहीं देना, रुकने यमानी वो है हिजरे अस्वद से पहले जो कॉर्नर है ना, जब आप तवाफ़ कर रही होंगी ना, तो हिजरे अस्वद आने से पहले जो कॉर्नर काबा का आता है वो है रुकने यमानी, ठीक है। एक फिर आप एक तवाफ़ जो आपका होता है वो कब मुकम्मल होता है, जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। फिर 7 चक्कर आपके जब मुकम्मल हो गए, तो फिर आपने मकाम इब्राहिम की तरफ आना है, वो जो गोल्डन सा बना हुआ है इस तरह से गुम्बद सा ऊपर है, उसके पीछे आके आपने फिर 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। कोशिश करें कि आप पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। नमाज ये पढ़ के वह आपने जमज़म पीना है, कुछ सर पे भी डालना है। जमज़म पीने के बाद आपने सही के लिए सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाना है, ठीक है। और सही के अल्फाज आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह सारी बुक्स में ही, आपको पता है कि वो आपके पास लिखे हुए हैं उस वक्त, तो ठीक है। तो आपने फिर वो अल्फाज अदा करने हैं, फिर आपने सही शुरू कर देनी है। सही में एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सही जो है ना वो सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर हो गया, ठीक है। वो आपका तवाफ़ की तरह नहीं है कि सफ़ा से वापस, सफ़ा से मरवा गए और मरवा से वापस सफ़ा पे आए तो फिर एक चक्कर होगा, नहीं, सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा वापस दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा तीसरा चक्कर, फिर वापस इस तरह से करके होगा, ठीक है। तो 7 चक्कर इसके भी होंगे, चक्कर तो नहीं होगा वो, वन वे एक चक्कर हो गया, ठीक है। और आप सही के दौरान आप जो भी आपको कुरानी दुआएं या मसनून दुआएं याद हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आके आपने बस आपका उम्रा हो गया, आपने आके बस ना एक या दो पोर के बराबर अपने बाल खुद ही काट लें या किसी औरत से कह दें आपके काटते बाल, तो उसके बाद आप आराम से बाहर आ जाते हैं, बस ये आपका उम्रा हो गया, दैट्स इट। ये आप उम्रे की अपने लिख लें, ठीक है। तो आपको मैंने स्टेप वन बताया, आप मीकात से स्टार्ट करेंगे, आगे आप एरो लगाएं, स्टेप टू लिखें और उसके आगे लिखें उम्रा, फिर उसके आगे एरो लगाएं, स्टेप थ्री लिखें डे 8, 8 ज़िलहज, ठीक है। 8 ज़िलहज में आपने क्या करना है, आपने डे और नाइट जो है ना आपने मीना में गुजारनी है, दिन और रात मीना में गुजारना। जिस दिन आप पहुंचे ना, तो दिन और रात आपने कहाँ गुजारना है, मीना में गुजारना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 नमाजें पढ़ी, ये आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, जोहर असर मगरिब इशा और अगले दिन की फजर, और सारी नमाजें आप कसर के साथ पढ़ेंगे। आपको पता है फजर तो कसर होती ही नहीं है और मगरिब भी नहीं होती, बाकी जोहर असर इशा ही रह गई, और तलबिया कहना है आपने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस वक्त तो इतनी खूबसूरत आवाज़ें तलबिया की आनी चाहिए। तलबिया कहते हैं लोग भूल ही जाते, अच्छा जहाज़ में भी भूल जाते हैं, जब मीकात से गुजर गए आगे तलबिया कहते जाएं, फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाते। फिर आप याद करा दिया करें, मर्दों को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है तो आप तलबिया पढ़ते रहें, बातें करने से परहेज सारा करें, तलबिया जारी रहे, ठीक है। अच्छा अब जो है ना, अब स्टेप फोर लिखें, अब डे 9 आ गया ना, ये फजर आपने पढ़ ली भी है मीना में, अब डे 9 आ गया, ये है यौमुल अरफा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन। अब इस दिन आपने पूरा दिन अरफा में स्पेंड करना, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको जगह मिले खड़े होके अगर दुआएं करें ना, वो ज़्यादा बेहतर है, किबला रुख होके, आप जब मगरिब की अज़ान हुई तो वहाँ से आप निकल जाएंगे फिर। तो अब स्टेप 5 लिखें कि आपने, या स्टेप 4 के ही अंडर लिख लें कि डे 9 में आपने पूरा दिन तो आपने अरफा में स्पेंड किया, और नेक्स्ट एरो लगाएं, नाइट आपने मुज़दलिफा में, डे 9 लिखें और नाइट आपने मुज़दलिफा में स्पेंड की, रात मुज़दलिफा में रहें, और मुज़दलिफा में ही आप मगरिब और इशा भी पढ़ेंगे। इसी तरह आगे एरो लगाएं, स्टेप 5 लिखें, अब आपने मुज़दलिफा के अंदर रात गुजार दी, अब जब आप सुबह उठे तो कौन सी तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई ना, तो 10 तारीख हो गई है। अब ये ईद का दिन है, जिसको यहाँ पे लोग ईद कहते हैं, हम यहाँ पे ईद कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपकी वो ईद होगी। बस उस दिन सुबह उठ के फिर आपने जो 4 काम करने हैं वो ये हैं कि सबसे जो जमरात में जो सबसे बड़ा है जमरातुल उकबा जिसको कहते हैं, उसकी रमी करनी है, उसको स्टोन मारनी है, फिर आपने कुर्बानी करनी है, फिर उसके बाद मर तो हेड को शेव करेंगे, आप थोड़ा सा काट सकती हैं बालों को, और फिर मक्का जाके तवाफे इफादा या तवाफे ज़ियारत कहते हैं जिसको, वो अदा करना, तवाफ अदा करना है, बस ये 4 काम करने हैं। और याद रखें रमी से पहले ही फिर आपने तलबिया कहना यहाँ पे बंद कर देना बस। और सही भी करनी है वहाँ, जब मक्का जाएंगे ना तो तवाफ भी करना है, तवाफ भी करना है और सही भी करनी है, और फिर आपने ये करके वापस मीना आना है, ये आपके डेस्टिनेशन मीना ही होना चाहिए। मक्का तो गए ना, आप तवाफ किया सही की वापस आ गए। अब ये 10th आपका डे हो गया, अब 11, 12 और 13, 13th को जो रहना चाहे मीना में तो रहे, 11, 12 को तो आपने रहना ही है, इन सारे दिनों को आपने मीना में ही गुजारना है। अब इन तीनों दिनों के अंदर आपने तीनों जो शैतान हैं उनको कंकरियां मारनी है, रमी करनी है, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना है। अब आपने तलबिया नहीं पढ़ना, अच्छा बस बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र, तकबीरात पढ़े, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो जिक्र वगैरह, और आपको मैंने कितने सारे जिक्र रमज़ान में बताए हैं ना, तो आप उनको नोट डाउन कर लें, अपनी वो वाली कॉपी से जिक्र सारे लिख लें, ठीक है, तो आप ज़िक्र का भी एक अलग से बना लें अपना कॉलम कि जो जो आपने ज़िक्र करने हैं, तो यहाँ पे बस ज़िक्र अज़कार करेंगे। और यहाँ पे इतना ख़ास कुछ आपको कोई ऐसी इबादत करने को, कोई स्ट्रेसफुल इबादत करने को कुछ नहीं होगा, बस सिवाए बस रमी करने जाना होगा। और कोशिश करें आप खुद जाएं, अब बाज़ औरतें मर्दों को दे देती हैं, बस ठीक है वो ही जाके करें, तो आप खुद ही करें तो अच्छा है। तो वापस फिर आप आ जाएंगे मक्का, और यहाँ से फिर आप निकलते वक्त अब तवाफ़े विदा करेंगे जो आखिरी तवाफ़ है। अगर आप चाहें तो तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े विदा को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप जा ही रहे हैं, आप अगले दिन ही जा रहे हैं और तवाफ़े ज़ियारत को आपने डिले किया है, क्योंकि 10 को भी कर सकते हैं, अगले दिन भी आप कर सकते हैं, अगर आपने डिले किया है तवाफ़े ज़ियारत को, तो उसी को फिर अपनी नियत तवाफ़े विदा की भी कर लें। क्योंकि तवाफ़े विदा वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब यहाँ से रुखसत होने लगो तो एक तवाफ़ कर लिया करो, विदा वगैरह का उन्होंने लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया था। तो आप वो जो तवाफ़ करेंगे, बस वो फेयरवेल तवाफ़ होगा, गुड बाय तवाफ़ जो इसको कहेंगे, तो वो होगा। तो आपका जो तवाफ़ ज़ियारत भी बन सकता है तवाफ़ विदा। तो लेकिन अगर आप वहाँ पे और भी कुछ दिन हैं, तो आखिर में आपने एंड में एक तवाफ़ करना है जो तवाफ़ विदा है, बस फेयरवेल तवाफ़ है। अब क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको एहराम में आप नहीं कर सकते? आप मर्द जो हैं वो किसी चीज़ से सर को नहीं ढांप सकते, इसी तरह बालों को शेव वगैरह या काटना या प्लग करना या ये नहीं कर सकते, नाखून भी नहीं आप काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते जो मर्द हैं, और इसी तरह ऐसी कोई भी बात करना। देखिए कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया 197 आयत में, फ़ला रफ़ा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, कि ना रफस हो। रफस क्या चीज़ है? ऐसी तमाम चीज़ें जो आदमी और औरत के दरमियान सेक्सुअल उसकी तरफ लेकर जाएं, वो अवॉइड करनी है। कोई ऐसी बात बात भी नहीं करनी, इशारतन भी नहीं कहना कि मतलब आराम के बाद मैं ये करूँगा, या कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है ना? किसी को निकाह का पैगाम दे सकते हैं, प्रपोज भी नहीं कर सकते। इससे तो मतलब हस्बैंड वाइफ अगर एक साथ हैं, तो इशारतन भी, इसका इशारतन भी कोई ऐसी बात, बातों बातों में कोई ऐसी बात भी नहीं कर सकते कि जो बाद में इस चीज़ की तरफ जो बात को इशारा हो, ठीक है? और वला फुसूक, ना कोई फिस्क की बात, ना कोई गुनाह की बात कर सकते हैं, कोई भी गुनाह का काम नहीं कर सकते आप, और ना ही जिदाल कर सकते हैं। जंगो जदल से याद रखिएगा, झगड़ा नहीं करना। और अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आपस में मियाँ बीवी की कभी वैसे नहीं लड़ाई होती, वहाँ पर जाके इतनी लड़ाई हमारी हुई और इतनी वो हुई, पता नहीं एक तो शैतान वैसे ही ज़रा हावी हो जाता है, क्योंकि जब आपको कहा गया कि आराम में आपने ये नहीं करना, तो फिर वो और ही ज़्यादा बस सवार हो जाता है इंसान के ऊपर। तो शैतान तो आपको इस तरफ को करेगा वो, लेकिन आपने प्लीज़ अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी से भी नहीं झगड़ा। कुछ लोग जाके वहाँ पे जो लीडर आए वो बने होते हैं आज ग्रुप के, उनके साथ झगड़ने लगते हैं, कुछ किसी और के साथ, तो झगड़ा नहीं करना आपने, ये याद रखें, याद रखने की बात है, ठीक है? इस तरह आपको जो बात बहुत याद रखनी है वो ये कि हज पे आपका हर अमल जो है ना, वो यानी पूरी रूह के साथ हो, पूरी अपनी स्पिरिट के साथ हो, ऐसे ना हो कि बस सिर्फ ये एक रिचुअल अदा कर रहे हैं और बस कोई मतलब उसके अंदर कोई रूह ही ना हो, बस ऐसे एक बेरूह सी एक वो काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखें जिस चीज़ के रूह ही ना हो, वो चीज़ जो होती है ना डेड होती है, तो आपका हज डेड नहीं होना चाहिए। जब आप एहराम बांधने लगें तो उस वक्त याद रखिएगा कि मेरा आखिरी लिबास कफन होगा, और वो भी ऐसा ही लिबास होगा। जब आप तवाफ करने लगें उस वक्त याद रखिएगा कि मेरी ज़िंदगी का सेंटर अल्लाह की ज़ात ही होनी चाहिए, जैसे मैं इसको सेंटर में रख के इसके गिर्द घूम रही हूँ, इसी तरह मेरी सारी ज़िंदगी मेरे रब के गिर्द घूमनी चाहिए। जब आप जमजम पीने लगे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की तड़प को याद करिएगा, हज़रत बीबी हाजरा को याद करिएगा, कैसे उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया था। जब आप सही करने लगे ना भाग्य सुकत भी, उनकी बेचैनी को और किस तरह से उन्होंने असबाब के लिए भी जद्दोजहद की थी उसको भी याद रखिएगा। जब आप मीना में कयाम करें तो फिर आपसे ये सोचना कि अल्लाह ताला ने देखो इस जगह को जो एक बियाबान थी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज कितनी बड़ी बस्ती बना दिया जिसमें लाखों इंसान बैठे हैं, कल ये फिर वीरान हो जाएगी, कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। देखो कैसे अल्लाह ताला बसाता है लोगों को और कैसे उठा लेगा। और अरफात का दिन जो है, कहा जाता है कि हशर का मैदान यही बनेगा, तो इस दिन याद रखिएगा कि क्या पता हो कि यही हशर का मैदान हो और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरा हिसाब किताब हो रहा होगा, तो ये दिन कितना मुश्किल होगा मेरे लिए उस दिन। ये जगह, इस जगह का खड़ा होना, कहा जाता है कि एहदे अलस्त भी यही हुआ था, ये भी कुछ रिवायात में आता है। तो जब इंसान वहाँ पे खड़ा होना तो फिर याद करे कि मैंने अपने रब से, जब मैं एक रूह थी उस वक्त मैंने अपने रब से यहाँ पे मुलाकात की थी, और अब जब मेरे रब ने मुझे जिस्म दे दिया तो अब मैं इस जिस्म के साथ अपने रब के पास हाजिर हुई। तो हशर के मैदान को भी देखिएगा, ऐसा ही होगा, लोग इसी तरह होंगे, लाखों इंसान। मुस्तलिफा की वादी में जाए ना, जब चल के आप जा रहे होते हैं या बसों में होते हैं तो देखिएगा हशर के मैदान में भी इसी ही तरह लोग चल रहे होंगे। अल्लाह ताला के जब सॉरी क़यामत के दिन लोग खड़े होंगे तो अल्लाह की तरफ चल रहे होंगे इसी तरह, हशर के मैदान की तरफ, सब एक पुकार की तरफ चल रहे होंगे, सब की समत एक ही होगी। फिर जब आप शैतान को कंकर मारे ना तो लोग बाज़ दफ़ा बड़े जज्बाती हो जाते हैं, उस वक्त ये सोचना कि ये दीवार नहीं है जिसको मैं कंकर मार रही हूँ, एक्चुअली ये मेरे जो अंदर शैतान है ना इसको मैं मार रही हूँ। उसको मारना नहीं भूलिएगा, ये ना हो कि आप अपने नफ्स को तो ज़िंदा छोड़ दें और शैतान को साथ तो आपने दोस्ती रखी हो और यहाँ पे आप पत्थर मार रहे हैं। ये याद रखिएगा कि आपने उस शैतान को मारना है जो आपको बहकाने के लिए आपका साथी बना हुआ है, हर कुर्बानी करते हुए आपने ये सोचना है कि मैं अपने रब की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ये तो एक जानवर कुर्बान किया ना उसके रास्ते में, मैं तो उसके रास्ते में अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपनी ख्वाहिशात, अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और अहराम उतारते हुए आप याद रखना कि अब मुझे वापस उसी दुनिया में जाना है जहाँ पे गहमा गहमी है, जहाँ पे नफसा नफसी है, वापस इन्हीं घरों में आना है। हाँ, तो इनमें आके भी ये सारे सफ़र को जो आपने हज का सफ़र किया है और वहाँ पे जिस तरह अपने रब के साथ आपने कनेक्शन बनाया है उसको भूलना नहीं है। अब मैं वापस जा रही हूँ उसी दुनिया में जिसको मैं छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बैठी हुई थी, अब मैंने वापस वहीं जाना है, तो मैंने ये सब कुछ यहाँ पे सीखा है, मैंने इसको भूलना नहीं, मैं सबको साथ लेकर जाऊँगी। और अगर आपने वाकई हज की रूह को पा लिया और अल्लाह करे आप पा ले, तो याद रखना कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जो गुनाह पहले करते थे अब इनसे हट जाएंगे और कोई नेकी का काम करने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ये पता ही इंसान का ये चलता है कि इंसान हज पे गया है तो वाकई इस तरह से हो गया है कि ये पाक साफ हो चुका है और इसकी ज़िंदगी ही बदल गई है। आपको कुछ चीज़ें मैं आपके साथ रखने के लिए बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ें अपने साथ रखें तो अच्छा है वहाँ के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए, ताकि ये सारे आपका याद रखें कि एक मेंटल टेस्ट ही होगा आपका, ये जितना भी आपका सफ़र है ना आपका मेंटल टेस्ट मोर है देन फिज़िकल टेस्ट। तो आप मेंटली प्लीज़ अपने आप को वाकई बहुत होश से काम लेना है, जो बातें बताई हैं इनमें से कोई बात भूलनी नहीं। अक्सर नाखून कटने के लिए तो हम बहुत ही एहतियात करते हैं, या बाल ना टूट जाए इसकी बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन गुस्सा करना और इतने उसमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाना और फजूल बहसें और ऊंची आवाज़ों में बोलना, इससे हम बाज नहीं आते। तो ये याद रखना है आपने। बाकी जाहिर है आप कुछ सामान साथ लेकर जाएंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको लिए आसानी रहे वहाँ के लिए। बाकी आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनेंगे, ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ। एक तो ये कि बेकार चीज़ें ना लेकर जाए, क्योंकि अगर आप बेकार चीज़ें लेकर गए ना, आप इतना कुछ यहाँ से भर के लेके जाते हैं, फिर वहाँ से इतनी शॉपिंग करते हैं, आपका सामान डबल से ट्रिपल हो जाता है, जितना आप लेके गए थे ना उससे 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोगों के लिए आप तोहफे लेते हैं, फलान चीज़ें करते हैं। एक तो मक्का में तो बिल्कुल अपना टाइम खुदा के लिए वेस्ट ना करें शॉपिंग पे, अपनी ज़रूरी चीज़ें यहीं से लेकर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें तो वहाँ पर मिलती हैं, लेकिन बात यह है कि उसके लिए तो आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा ना, इतनी भीड़ इतना रश होता है वहाँ पर, या बाज़ार में टाइम ना वेस्ट करें। हाँ, जब आप मदीना जाएँ तो वहाँ पर आपके पास वक्त होगा, ज़ाहिर है आप मस्जिद तो बंद हो जाती है फिर, तो रात को तो वो खुली नहीं रहती, लेकिन दुकानें खुली रहती हैं, तो आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, और आपके होटल जाने और आने के रास्ते में आती हैं दुकानें, तो आप वहाँ से आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। मगर जाहिर सी बात है आप लोग कुछ ना कुछ जाहिर है वहां पे खरीदेंगे, और खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं, तिजारत करना मना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग चीज़ें लाया करते थे, बेचा भी खरीदा भी करते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई हराम है, मगर मक्का में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बड़े मुख्तसर वक्त के लिए जाते हैं, और फिर पता नहीं है कि अल्लाह ताला कभी दोबारा लेकर जाए कि नहीं, तो कोशिश करें कि वहाँ पे ज़्यादा वक्त आप हरम में बैठें, मदीना में आप फिर शॉपिंग अपनी करें। तो यहाँ से जो आपने चीज़ें लेके जानी है, तो एक तो आप अनसेंटेड बेबी वाइप्स ले लें, वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि वॉशरूम जाने का वक्त भी नहीं होता, और या आपके पास बॉटल में पानी भी हो तो पानी आप किधर फेंकें आप हाथ धो के, तो आप अपने साथ अनसेंटेड जो है बेबी वाइप्स जब रखते हैं, तो कुछ खाते हैं अगर आप बस में या रास्ते में कहीं पे भी, तो आपने फौरन हाथ वाथ साफ कर लिए अपने। इसी तरह वैजलीन का ट्रैवल पैक जो होता है ना, छोटा ट्रैवल पैक, वो ले लें। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे चलने से ना ये थाइस पे स्पेशली जिनका वेट ज़्यादा होता है, तो थाइस आपस में रगड़ खाती है ना, जिससे रैश हो जाता है, तो उसके लिए आपको काम देगी वो, और फिर उसको किसी ठंडी जगह पे रखें ताकि वो सही अपनी हालत में रहे। वो आपके जो भी कमरे में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फ्रिज वगैरह है या कुछ है, तो आप वहाँ पे इसको रखें, कूल प्लेस में रखना चाहिए उसको। इसी तरह आप अपने लिए स्लीपिंग बैग यहाँ से ख़रीद लें, मुज़दलिफ़ा में तो आपको काम आएगा क्योंकि वहाँ पे रात गुजारनी होती है, लेकिन उसके अलावा भी एयरपोर्ट्स पे भी आपको बहुत दफ़ा बहुत लंबा लंबा टाइम वेट करना पड़ता है, तो आप लाइट टेस्ट जितना आपसे लाइट हो सके ना, जो बिल्कुल एक बंडल की तरह होता है, छोटा सा भी एक ट्रैवल ये मिलता है स्लीपिंग बैग, तो आप उसको जहाँ पे भी एयरपोर्ट पे भी ज़रा सा टाइम मिला तो आप सो गए थोड़ी देर के लिए, सर उस पर रख लिया तो आपके काम आता है वो। इसी तरह आप ईयर प्लग्स ख़रीदना नहीं भूलिएगा, ईयर प्लग ज़रूर लें। हज में काफ़ी शोर हंगामा वगैरह भी होता है, कभी आपको आराम का अगर मौका मिल जाए तो आराम आपने कर लेना है, ठीक है, आराम करना सोना कोई गलत नहीं है, और मीना में कई दिन ऐसे होंगे कि आपको पास सब चीज़ें इबादत भी कर ली, सब कर लिया, फिर उसके बाद आप आराम भी करते हैं, वो अल्लाह ताला की तकबीरात बुलंद करने के दिन है, वो अल्लाह का जिक्र करने के दिन, अल्लाह ताला का जिक्र भी कर लिया, उसके बाद आप सोना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है हर एक के अपने टाइमिंग्स होते हैं सोने के, या फिर रात भी होती है तो कई लोगों को खराटों की आदत होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है और आप पूरी रात नहीं सो सकते, तो वो वाले जो डिस्पोजेबल से होते हैं ना ईयर प्लग्स पहुँच के जो होते हैं, वो कान में आप डालें कोई आवाज़ नहीं आती, वो ज़रूर आप ख़रीद लें अपने लिए। इसी तरह बस में भी आप जा रहे हैं तो कभी कभी डाल ली और सो गए आप। इसी तरह आई शेड्स ले लें, शेड्स जो होते हैं आंखों के लिए, क्योंकि कभी लाइटें वगैरह ऑन की होती हैं टेंट्स में भी ना, लाइटें ऑन करके वो लोग तो फिर बातें करती रहती हैं औरतें और सब, ज़ाहिर है कोई कुछ पढ़ रहा है या कुछ है, तो आपने वो अपने आंखों के आगे उनको रख लिया, जैसे जो छोटे छोटे पर्दे की तरह के होते हैं ना, आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ, तो उनको आप आँख पे रख के और आप सो जाएं।
जहाँ पे सोने का मौका मिले, आराम करने का मौका मिले तो आराम कर सकते हैं। फिर आप ये जूस के पाउडर पैक्स मिलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ना, आप उनको साथ रखिए। बिल्कुल छोटे पैक्स होते हैं वो, उसके अंदर आपने अपनी बॉटल में डाला और उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, ग्लूकोज वगैरह टाइप और इस तरह की चीज़। आप इसी तरह स्मॉल जो आपकी छोटी सी स्नैक बार्स होती हैं वो भी आप चाहें तो यहाँ से ले जाएं। कभी होता है कि लंबे लंबे सफ़र होते हैं बसों में और आपको नहीं खाने को मिलता, तो स्पेशली उन लोगों को जो एकदम वीकनेस फील होने लगती है कि भाई सुबह से कुछ खाया नहीं, और तो वो स्नैक बार्स होंगी आपके पास तो आप वो ले लें, लेकिन चॉकलेट वाली ना लें क्योंकि मेल्ट हो सकती है ना, तो वो आप फ़ौरन अपनी इंस्टेंट एनर्जी के लिए ले सकते हैं। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा ये कहूँगी कि आप लोग सब अपने लिए, आप जिस कुरान पाक से पढ़ते हैं, पॉकेट साइज़ कुरान पाक आपके पास होना चाहिए। वहाँ पे बेशक कुरान पाक मिल जाते हैं, मैं नहीं कहती हरम में होते हैं हर तरफ, मगर आपका अपना कुरान पाक आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप जैसे मसलन आप अपना टारगेट रख लें कि मैंने हज के सफ़र में एक या दो कुरान ख़त्म करने हैं, मुकम्मल करने हैं तिलावत करके, और इतना इतना मैंने हिफ्ज़ करना है। तो आपको बहुत टाइम होगा, यकीन करें ना वहाँ पर बच्चों का कोई काम है धंधा है, ना कोई और शॉपिंग है, ना कोई जॉब है, ना कोई कोई भी काम है ही नहीं है वहां पे। सारा दिन तो आप फारिग ही होंगे, स्पेशली मीना में टेंट में बैठे में क्या करेंगे बताएं सारा दिन। तो आप वो सारा वक्त आप फारिग वक्त में अपने लिए प्लान करें कि मैं उस वक्त में क्या करूंगी, उसके मुताबिक आप अपनी चीजें रखेंगे। फिर अगर तर्जुमे वाला कुरान लेना चाहते हैं तो वो साथ रख लें, पर इतना पॉकेट साइज हो कि आपको पढ़ना भी इतना बारीक भी ना हो कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़े, और ऐसा भी ना हो कि बहुत बड़ा हो फिर उठाना ही मुश्किल हो जाए। तो और उसमें आप हाईलाइटर भी रख लें, अपनी फेवरेट आयात को आप हाईलाइट करते रहें, अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारें। आप तस्बीह साथ अपनी ज़रूर रखें सारा टाइम, आप जितनी देर सफ़र के अंदर हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कि कोई हाथ पे, तो बेशक तस्बीह करना ज़्यादा अच्छा है अफजल है, लेकिन मैंने इसलिए रखी थी अपने साथ क्योंकि भूल जाता था। हर वक्त हमें जिक्र करने की आदत नहीं होती ना, तो वहाँ पे अगर तस्बीह हाथ में होती है तो फिर जाहिर है, और फिर वहाँ पे क्या रियाकारी, वहाँ पे तो हर एक अल्लाह के जिक्र के लिए गया होता है, सभी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आप अगर तस्बीह हाथ में होगी आपको याद आ जाया करेगा, तो आप एक तस्बीह मसलन आज के दिन की मेरी ये तस्बीह है, मसलन दरूद शरीफ की तस्बीह है, तो आप पूरा दिन दरूद शरीफ पढ़ते रहे। और मैंने तो सारे सफ़र में ही जितनी तस्बीह याद की थी दरूद शरीफ की थी, और मैंने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस किया उसके बाद ना। और फिर उसके अलावा आप एक छोटा पॉकेट साइज़ रेडियो भी रख सकते, क्योंकि अराफात में ना आप सारे तो जा नहीं सकते मस्जिद में खुतबा सुनने के लिए, तो हम तो वहाँ पर इंतज़ार ही करते बैठे रहे, पता नहीं खुतबे की आवाज़ शायद हमें ये टेंट तक भी आएगी। वो पता चला कि नहीं, खुतबा तो हो रहा है वहाँ पर लेकिन हमें नहीं आवाज़ आएगी, और वो तो बहुत दूर है मस्जिद। तो फिर अगर आपके पास पॉकेट साइज़ हो ना वो छोटा सा रेडियो जो बिल्कुल $1-2 का मिल जाता है, हल्का फुल्का सा, वो उसमें दो बैटरीज डालो, चलो आपका वहाँ पे रेडियो चल जाएगा, आपको कम से कम खुतबा भी सुनेगा, चलो नहीं भी कुछ समझ आती तो कम से कम एक कुछ ना कुछ बात तो आएगी, एक खुतबे की वो एक अलग फीलिंग होती है ना कि यहाँ पर खुतबा सुनना है। तो हम हमेशा से देखते आते थे हज की, जब भी वीडियोज़ देखते थे TV पर भी हज लाइव दिखाते थे तो वहाँ से खुतबा सुनवाया करते, तो हम सोचते थे शायद सभी हाजियों को सुनता है, मगर ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके पास रेडियो आप अपना लगा के बैठ सकते हैं। आप अपने लिए अनसेंटेड सोप्स ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि आप सेंटेड तो नहीं यूज़ कर सकते एक बार की, आप ना अगर आप एक बार लेते हैं ना तो उसके 3-4 टुकड़े कर लें, ठीक है, पीसेस कर लें, ताकि आप अपने सामान में से, मसलन आप होटल में हैं तो एक पीस निकाल लिया बस, उसको बाथरूम में रखा है अपना यूज़ किया और बस, और बाकी पूरा साबुन निकालेंगे, बार बार रखना उसको गीले को, बार बार निकालना वो मुश्किल होता है, आपका सारा वो ड्राई रहेगा आपके सामान में, छोटे से आपने पीस निकाला जो 2-3 के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन आप होटल में हैं उतने दिन के लिए यूज़ होगा। फिर आप इसी तरह मीना में हैं तो आप अपने लिए छोटा सा वो एक रैपर में डाल के ले जाएंगे, मीना में जब आप जाएंगे वो आपको पूरा सामान नहीं ले जाने देते, आपका पूरा सामान वो रखवा देते हैं और आपको कहते हैं एक बैग अपना तैयार कर लें जिसमें आपने मीना तक के लिए चीज़ें रखनी है। तो आप अपने इस तरह से ऐसे कंफर्टेबल लिबास रखें जिसके अंदर आपने सोना भी है और उठना भी उसी के अंदर है, तो 2-3 लिबास रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आपको चेंज करना होगा या ईद के दिन जो आपने कपड़े पहनने हैं तो आप उस दिन मीना में ही होंगे फिर। अच्छा, इसके अलावा आप अपने कंफर्टेबल सैंडल चप्पल जो भी आपने रखनी है वो ज़रूर रखें, जिसके जो आपकी वॉकिंग के लिए आपके काम आती हो, ठीक है। आप मैं सब फिर वही बात कहूँगी कि बेशक वहाँ पे मिल जाती हैं, मगर वहाँ पे फिर आप जाके उनको ढूंढने जाएं और फिर आपकी कंफर्ट के मुताबिक ना मिले ना, तो बहुत मुश्किल होती है। और एक दो इसलिए कह रही हूँ कि कभी वहाँ पे जाके टूट जाती है, वॉक क्योंकि आपने ज़्यादा करनी होती है, कभी गुम भी हो जाती है, तो इसलिए एक दो होंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी रहेगी। अच्छा, जिन चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड करें, एक तो ये कि मैंने आपको जैसे बताया है कि हिजरे अस्वद को चूमने की कोशिश ना करें, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, पॉसिबल ही नहीं होता, चाहे आप जिस टाइम पे मर्जी चले जाएं। औरतें ऊंची आवाज़ से तलबिया नहीं पढ़ेंगी, आहिस्ता में पढ़ेंगी। अच्छा, इसी तरह अरफा के दिन से पहले एग्जॉस्ट नहीं होना, फिर गुस्सा नहीं करना बिल्कुल, और चिड़ना नहीं है किसी बातों से। आप अपने बार बार जाके मस्जिद आयशा से अहराम पहन के वापस आना और फिर उसके बाद उमरा करना, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है। हज़रत आयशा के साथ एक वो वजह थी जिसकी वजह से उनके ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी, मगर अगर आपकी वो वजह है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन बार बार जाना, फिर मस्जिद आयशा से अहराम बांध के फिर वापस आ रहे हैं, फिर उमरा कर रहे हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है चीज़। तो इसलिए ऐसी इसकी बजाय, ऐसे एग्जॉस्ट होने की बजाय आप हरम में ही वक्त गुजारें, नवाफिल पढ़ें वहाँ पे, अपना काबा को देखें वहाँ पे, तवाफ़ करें वहाँ पे, इन चीज़ों की कोशिश करें। और महरम के साथ जाने का मकसद ये होता है कि आप महरम के साथ रहें, ये नहीं है कि आपकी अपनी एक्टिविटीज़ है, आप कह रही मैं तो जा रही हूँ, आप सोए में तो आप सोए रहें और मैं निकल रही हूँ, नहीं, आप महरम के साथ जब सफ़र कर रहे हैं तो आप महरम के साथ ही रहें, महरम की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है और साथ आपके रहना चाहिए उनको। और जब मस्जिद नबी में भी आप जाएं, बहुत एहतराम के साथ जाएं, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, आपने उसकी रोज़ा मुबारक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के इंटेंशन के साथ नहीं आप जा सकते उस मस्जिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया, हाँ इसलिए जा सकते कि वो वहाँ की नमाज अफजल है, वहाँ की नमाज कहीं पे 50,000 नमाज़ों के बराबर, कहीं पे 1,000 नमाज़ों के बराबर अजर है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का, और सब मस्जिदों की ज़्यादा से ज़्यादा अफजल मस्जिद नबी की ज़्यारत है, सिवाय हरम के, सिवाय खाना काबा के, वहाँ की मस्जिद हराम से के बाद वो मस्जिद नबी का नंबर आता है। तो इसलिए आप वहाँ पे इस नियत के साथ जाएंगे, फिर आप जब वहाँ पे चले जाएं तो हाज़िरी वहाँ पे देना कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आप दरूद शरीफ पढ़ते जाएं, इंतहाई वक़ार के साथ जाएं, वहाँ पे खामोशी रखें, भागने की ज़रूरत नहीं है, शोरगुल की ज़रूरत नहीं है। सहाबा कराम तो वहाँ पे ज़रा ऊंची आवाज़ से भी नहीं बात करते थे, तो वहाँ पे जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ मुंह करके दुआ नहीं कर सकते आप, खाना काबा की तरफ ही मुंह करके उनके लिए भी दुआ करेंगे, और दरूद शरीफ उनके लिए बेहतरीन दुआ है, फिर बाकी उनके जो सहाबा वहाँ पे दफन है उनके लिए भी दुआ करें। जन्नतुल बकी की तरफ जाने का मौका मिले तो वहाँ पे भी जाके देखें किस तरह से हमारी माएँ वहाँ पे सो रही हैं, और कैसे सहाबा कराम और मस्जिद नबी में जाके, बल्कि मदीना में भी आप जब जाएं तो लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आए कि ये वो जगह है और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी को उस वक़्त अपने पास जगह दी थी जब मक्का वालों ने उनका रहना वहाँ पे दूभर कर दिया था। तो जब आप मदीना की फिजाओं में सांस लें तो उस वक्त यही सोचेगा कि यहाँ पे कभी मेरे नबी आए थे, इन गलियों में से गुजरे थे, और मस्जिद नबी जिस पूरी जगह पे है ना, वही पूरी जगह मदीना थी उस वक्त, अब तो ये एक्सपेंड हो गया ना, तो यही पूरा मदीना की बस्ती थी, बस इतनी छोटी सी थी। उन बाजारों को जब आप देखें जो मदीना में है, ख़ास तौर पे मस्जिद नबी के करीब करीब जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, तो यही सोचना कि हमारे सहाबा भी तो यहाँ से गुजरते होंगे, उनके भी दिल चाहते होंगे कि ये चीज़ें लें, लेकिन उनने कैसे सब्र से ज़िंदगी काटी, तो हम क्यों हराम के ऊपर फिर इस तरह से गिर जाते हैं, हम क्यों ऐसे हो जाते हैं कि हर ख्वाहिश पे हमारी जान निकलती है, हर ख्वाहिश पे दम निकलता है कि बस ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। उन्होंने कैसे ज़िंदगी सब्र के साथ काटी और कैसी कुर्बानियाँ दी, तो उसका सफ़र तो खैर अलग ही है। बातें तो बहुत सारी हैं आज की, मगर मैं आपको चंद एक यही ज़रूरी ज़रूरी बातें ही बताना चाहती थी, ताकि अल्लाह ताला करे कि आप लोगों का ये सफ़र इतना खूबसूरत सफ़र हो जाए, ज़िंदगी का यादगार सफ़र हो जाए। اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ وہاں کا جانا قبول فرما لے، اور آپ لوگوں کو اس طرح پاک صاف لے کر آئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جس دن، اور اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی یہ موقع دے کہ اللہ ان کو واپس دوبارہ وہیں بلائے، تو جہاں جب وہاں پہ جائیں تو مجھے ضرور آپ سب دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، اور دعاؤں کی لسٹ ابھی سے بنانا شروع کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سفر مبارک کرے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرما دے، اور پھر اس حج کی انشاء اللہ تعالیٰ آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے، تا حیات حفاظت کرنی، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک اس حج کی حفاظت کرنی ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں قائم رہیں، کہ حج کرنے کے بعد نہ تو کوئی تکبر، نہ کوئی بڑائی، نہ کوئی حاجن بی بی کہلانے کا شوق، کچھ نہیں، یہ میرا سفر صرف میرے رب کی خاطر تھا، کسی ریاکاری میں نہیں مبتلا ہونا، کسی تکبر میں نہیں مبتلا ہونا، کسی کوئی ایسی بڑائی کی بات نہیں کر دینی کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، کہ جس سے اللہ نہ کرے کہ حج کا سفر ضائع ہو جائے، حج کی یہ جو آپ نے عبادت کی ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ جانا اور یہ آنا مبارک فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.